डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड्स। व्याख्यान 8, शेफर्ड किंग। 2024 डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 8 है, शेफर्ड किंग। खैर, इस खंड में हम रिहाई और स्प्रिंगबोर्ड के बारे में उस व्यक्ति के बारे में विचार खत्म करने जा रहे हैं जिसे रिहाई शुरू करनी थी, जो कि राजा है। और हम ऐसा राजा के लिए पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रूपकों में से एक के बारे में बात करके करेंगे, और वह शब्द है चरवाहा। लेकिन अभी मुझे रिलीज अवधारणा पर अपना अंतिम व्याख्यान समाप्त करने में कुछ समय बिताने दीजिए। तो यह कभी नहीं किया गया था। दो इतिहास 36:21 कहता है कि इसके परिणाम होंगे, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह याद दिलाना है कि ईश्वर ने प्राचीन इसराइल के लिए विवेक जगाया। प्राचीन इसराइल के लिए वह विवेक भविष्यवक्ताओं का था, और वे परमेश्वर की ओर से मध्यस्थ थे। पैगंबर मूसा के उत्तराधिकारी थे। उन्हें परमेश्वर द्वारा इसराइल को कानून के बारे में बताने के लिए डिजाइन किया गया था, और इसलिए उन्होंने रिलीज जैसी चीजों से संबंधित समस्या को पाट दिया जब यह कभी नहीं किया गया था। तो मैं आपका ध्यान यशायाह जैसे महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और यदि हम यशायाह अध्याय 42 में केवल कुछ छंदों को देख सकें, तो परमेश्वर यशायाह के माध्यम से लिखते हैं, देखो मेरा सेवक जिसे मैं संभालता हूँ, वह मेरा चुना हुआ है, जिससे मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह उत्पन्न करेगा राष्ट्रों को न्याय। बेशक यह पारदर्शी नहीं है कि नौकर कौन है और यह सब कैसे काम करता है। जो पारदर्शी है वह यह है कि भगवान न्याय लाने के लिए इस सेवक का उपयोग करेंगे। वह एक तकनीकी शब्द है, न्याय वह है जो राजाओं को प्रदाता और संरक्षक के रूप में करना चाहिए था। और इसलिए जैसा कि भगवान इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो न्याय लाएगा, यशायाह 42 के श्लोक 6 में ध्यान दें, मैं प्रभु हूँ, मैंने तुम्हें धर्म से बुलाया है, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा, और मैं वह तुझे राज्य जाति के लिए वाचा और जाति जाति के लिए ज्योति ठहरेगा। और वह राष्ट्रों के लिए ज्योति बनकर क्या करेगा? वह अंधी आंखें खोलेगा और बंदियों को काल कोठरी से और अंधियारे में रहने वालों को बंदी गृह से निकालेगा। वह जो करेगा वह लोगों को आजाद करके न्याय दिलाएगा, कैदियों को जेल से मुक्त किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यशायाह ने इस अवधारणा को ले लिया है कि यह नौकर क्या करेगा, और जब तक हम अध्याय 61 तक पहुंचते हैं उसने नौकर की अवधारणा को और भी अधिक विकसित कर लिया है। लेकिन उस प्रसिद्ध मार्ग में वह अध्याय 61 में लिखते हैं, प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने पीड़ितों को अच्छी खबर लाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, उन्होंने मुझे टूटे हुए दिलों को बांधने, स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए भेजा है, बंधुओं को और बंधुओं को स्वतंत्रता से, प्रभु के अनुकूल वर्ष का प्रचार करो। अब ऐसा लगता है कि यशायाह ने यहाँ जो किया है वह एक ऐसा अंश है जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है, लेकिन मुझे लगता है कि यशायाह ने जो किया है वह यह वर्णन करने के लिए रिलीज की शब्दावली का उपयोग करना है कि आने वाला नौकर क्या करने जा रहा है। और मुझे लगता है कि यह तब सबसे स्पष्ट होता है जब वह बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करने जैसी बातें कहते हैं। स्वतंत्रता शब्द घृणा शब्द है। यह हिब्रू बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण शब्द रिलीज शब्दों में से एक है। मुझे संदेह है कि वह इसे अनुकूल तरीके से उपयोग कर रहा है ताकि वह केवल हर 7 साल में होने वाले अपमान के बारे में बात न कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आने वाले सेवक व्यक्ति के अद्वितीय शाही मंत्रालय का उल्लेख कर रहा है। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि वह रिलीज भाषा को अपना रहा होगा, इसे वहीं लौटा रहा होगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, एक शाही व्यक्ति नौकर को। आप जानते हैं, कभी कभी ईसाई के रूप में हम भूल जाते हैं कि यदि हम राजत्व को नहीं समझते हैं तो हम अपनी बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। और नौकर जैसे शब्द, सबसे पहले हम शर्माते हुए नौकर शब्द को देखते हैं और हम जानते हैं कि यह एक सुधारक शब्द है, क्योंकि नौकर वास्तव में एक गुलाम है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि गुलाम एक शाही शब्द है। किसे पता था? खैर, इसीलिए हम यह वीडियो देख रहे हैं। प्राचीन निकट पूर्वी राजा आमतौर पर स्वयं को किसी देवता के दास के रूप में चित्रित करते थे। वास्तव में जब कोई राजा किसी देवता के मंदिर के निर्माण या नवीनीकरण का आदेश देता था तो राजा आमतौर पर खुद को एक गुलाम के रूप में चित्रित करता था। उन्होंने खुद की तस्वीरें खींची थीं, जिसमें उन्होंने काम का परिधान पहना हुआ था, जिसका मतलब था कि उनके पास कोई ऊपरी परिधान नहीं था और निचला परिधान था। राजा को अपने सिर पर मिट्टी की एक टोकरी रखे हुए और टोकरी को इस प्रकार पकड़े हुए चित्रित किया गया था। यह सब राजा की छवि को देवता के दास के रूप में दिखाने के लिए है। वह देवता के लिए मंदिर का निर्माण कर रहा है और वह इसका वर्णन करने के लिए शाही भाषा का उपयोग करता है, लेकिन यह विरोधाभासी लगता है कि एक राजा ऐसा करने में खुद को एक गुलाम के रूप में संदर्भित करेगा। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि यशायाह जिस नौकर के बारे में बात कर रहा है वह शाही विरोधी व्यक्ति नहीं है, वह एक शाही व्यक्ति है। और इसलिए यशायाह 61 में प्रभु की आत्मा मुझ पर है, वह प्रभु है जिसने मेरा अभिषेक किया है। खैर, एनॉइंटेड मी शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हमें अपना अंग्रेजी शब्द मसीहा मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि यशायाह 61 आसानी से आने वाले शाही व्यक्ति का वर्णन करने के लिए समझा जाने वाला एक मार्ग हो सकता है जो रिहाई की घोषणा करेगा, लेकिन यह शायद यह वर्णन करने के लिए रिलीज अवधारणा का एक रूपांतरण है कि राजा कैसे कार्य करेगा। वह प्रदाता और रक्षक होगा। लेकिन जो भी मामला हो, यशायाह 61 का उपयोग हमारे प्रभु द्वारा ल्यूक अध्याय 4 में राजा की पहचान और गतिविधि दोनों को प्रकट करने के लिए स्पष्ट रूप से किया गया है। ल्यूक अध्याय 4 में हमारे पास यह रणनीतिक मार्ग है जो सर्वविदित है। इसका उपदेश वास्तव में बाइबल में दिया गया है और यह एक अंश है जिसमें यीशु स्वयं को नौकर के रूप में प्रकट करते हैं, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह 61 में की गई थी। और इसलिए यहाँ ल्यूक के सुसमाचार में यह एक शाही व्यक्ति और इसराइल के राजा के रूप में यीशु की पहली प्रस्तुति है। इसलिए वह नाजरेत आया, जो उसका गृहनगर है, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार वह शबात के दिन आराधनालय में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। क्या यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है? उसने यशायाह को स्वयं नहीं खोला, जाहिर है यह उसे सौंप दिया गया था। और इसलिए उसने किताब खोली, निःसंदेह यह कोई पुस्तक नहीं थी, यह एक पुस्तक थी, और उसे वह स्थान मिला जहां यह लिखा था, यशायाह 61, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने गरीबों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे मुक्ति, एफेसिस की घोषणा करने के लिए भेजा है, जो मुक्ति के साथ साथ रिहाई दोनों के लिए ग्रीक शब्द है। उसने मुझे बंदियों को रिहाई का प्रचार करने, अंधों को दृष्टि लौटाने, पद्दलितों को आजाद करने, प्रभु के अनुकूल वर्ष का प्रचार करने के लिए भेजा है। और वह यशायाह 61 में श्लोक 2 के ठीक मध्य में रुकता है। ऐसा लगता है कि यीशु जो कर रहा था वह यशायाह में अपने लोगों को घोषणा कर रहा था, अपने युग में अपने लोगों को त्याग रहा था, कि जिस व्यक्ति के बारे में यशायाह ने बात की थी वह अब यहाँ है, और वह यीशु लेविटिकस 25 की रिलीज शब्दावली का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि इसे ल्यूक अध्याय 4 में अपनी पहचान प्रकट करने के लिए यशायाह द्वारा अनुकूलित किया गया था। यीशु यहाँ जो कह रहे हैं वह दो अवधारणाओं का विलय है। एक ओर मसीहा यहाँ है और वह ऋणों को रद्द करने की घोषणा करने जा रहा है। इस पर जॉन योडर ने एक बेहद दिलचस्प किताब लिखी है। हालांकि वह यह भी कहते प्रतीत होते हैं कि आने वाला मसीहा व्यक्ति अंधों को ठीक करेगा। वह मसीहा के उपचार मंत्रालय को प्राचीन इज़राइल के राजा के शाही मंत्रालय के साथ विलय कर रहा है, जो ऋणों को रद्द करने में उदाहरण है। अमेरिकी दर्शकों के विपरीत नाजारेथ में यीशु के दर्शकों को कम से कम आंशिक रूप से समझ में आ गया है कि वह क्या दावा कर रहा था। वह इसराइल का राजा होने का दावा कर रहा था। उन्हें वह अस्वीकार्य लगा क्योंकि उन्हें वह आपत्तिजनक लगा और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और केवल किसी प्रकार के चमत्कार या ईश्वर से मुक्ति के द्वारा ही वह वास्तव में उस घटना में अपना जीवन बचाने में सक्षम था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु किसी रिहाई को स्थापित करने के लिए प्राचीन शाही प्रथा का उपयोग कर रहे थे जिसमें भगवान राजा है, और मैं कहूंगा कि शायद बड़े अक्षरों में, शायद खुद को भगवान के रूप में पहचानते हुए, क्योंकि वह हर 7 साल में रिहाई की नहीं बल्कि रिहाई की घोषणा कर रहे थे। वह देहधारी परमेश्वर के रूप में उसकी अपनी पहचान से बंधा हुआ था। अब हर कोई इससे सहमत नहीं होगा और मैं स्वयं इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से ल्यूक 4 में कुछ स्मारकीय अनुपात घटित हो रहा है जब वह अपनी पहचान की घोषणा करता है और रिहाई की घोषणा करता है। हम इसे कैसे समझाएं, इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह यशाया 61 के लेविटिकस अध्याय 25 के रूपांतरण से जुड़ा है, जहां हमारे पास प्रसिद्ध जयंती अवधारणा है। तो एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है जिसे मैं यहाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ या आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें बाइबल को समग्रता से पढ़ने की जरूरत है। हमें लेव्य व्यवस्था 25, यशाया 61 और ल्यूक 4 को पढ़ने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है। हमें उन सभी को समझने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि लेविटिकस 25 उस रिलीज तक ही सीमित है जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। हमें यह समझने के तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता है कि यशाया ने लेव्य व्यवस्था 25 का उपयोग कैसे किया और यीशु ने यशाया 61 का उपयोग कैसे किया। जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि हम एक बहुत समृद्ध बाइबल संदेश को कमजोर कर रहे हैं। तो किसी भी कीमत पर इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्राचीन रिलीज पर वापस ले जाता हूँ और आपको शाही उपाधि के रूप में चरवाहे पर इस भ्रमण के बारे में बताता हूँ। जो मैंने आपको नहीं बताया वह यह है कि मेसोपोटामिया में हमें जो भी रिहाई मिली है उसमें राजा खुद को चरवाहे के रूप में संदर्भित करता है। यह आकस्मिक नहीं हो सकता कि राजा द्वारा ऋणों को रद्द करने की प्रत्येक रिहाई में उसने अपने लोगों को चरवाहे के रूप में अपना परिचय दिया। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह पुराने बेबीलोनियन काल में वापस जाना है और उस बिंदु को पकड़ना है और फिर यह पता लगाना है कि बाइबल में यह सब कहां समझ में आता है। जैसा कि मैंने आपको संक्षेप में बताया था, यदि हम प्राचीन विश्व में राजत्व की शब्दावली को नहीं समझते हैं तो हम बाइबल के संदेश को भी नहीं समझ पाएंगे, और मैंने एक दास का उदाहरण दिया था। अब मैं आपके लिए एक चरवाहे का उदाहरण देना चाहता हूँ। शेफर्ड पूरे प्राचीन निकट पूर्व में सबसे आम शाही उपाधियों और विशेषणों में से एक है। मेरे पास एक दस्तावेज है जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें उन राजाओं के सभी या लगभग सभी उदाहरणों का हवाला दिया गया है जो खुद को चरवाहे के रूप में उद्धृत करते हैं। यह पूरे प्राचीन निकट पूर्व में हमारे पास मौजूद सबसे प्रसिद्ध लगातार शाही प्रस्तुतियों में से एक थी। यह हमेशा प्राचीन निकट पूर्व में होता है। यह हमेशा एक सकारात्मक शीर्षक होता है। हमारे पास प्राचीन निकट पूर्व में चरवाहा शीर्षक का उपयोग नहीं है। हमारे पास यह कोई बुरा शब्द नहीं है। यह हमेशा एक अच्छा शब्द है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग राजत्व की दो महान गतिविधियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। चरवाहे की उपाधि में वह प्रदाता और रक्षक है। टिम लानियाक नामक एक आधुनिक लेखक द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट खंड है। मैं भूल गया हूं कि टिम कहां पढ़ाते हैं, गॉर्डन कॉनवेल, चारोलेट, लेकिन मेरा मानना है कि यह देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक स्कूल है। उन्होंने द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक लिखी। मुझे लगता है कि यह आईवी प्रेस, इंटरवर्सिटी या टिंडेल रहा होगा, मैं कौन भूल गया। किताब का शीर्षक शेफर्ड्स आफ्टर माई ओन हार्ट था। पुस्तक के पीछे वह उन सभी राजाओं की सभी शाही उपाधियों की सूची देता है जो चरवाहे होने का दावा करते हैं। वह हमें निकट पूर्व में राजाओं के लिए चरवाहा उपाधि की सर्वव्यापकता दिखाता है। मैं आपको जो बताऊंगा वह यह है, प्राचीन विश्व में रहने वाले और शासन करने वाले अधिकांश राजाओं में से हमारे पास उनके दस्तावेज नहीं हैं। लेकिन जिन राजाओं के दस्तावेज हमारे पास हैं, उनमें से अधिकांश राजाओं ने किसी न किसी समय स्वयं को चरवाहा कहा है। कई बार वे विभिन्न प्रकार के विशेषणों का उपयोग करते हैं, सिर्फ चरवाहा, धर्मी चरवाहा, विनम्र चरवाहा, जोशीला चरवाहा और दर्जनों अलग अलग विशेषण जो सभी चरवाहा शीर्षक के आसपास काम करते हैं। इसलिए इस तथ्य के बीच बहुत महत्व है कि प्राचीन मेसोपोटामिया में जब भी कोई रिहाई होती थी राजा को चरवाहा कहा जाता था, और यह तथ्य कि ईश्वर स्वयं को पुराने नियम और नए नियम में एक चरवाहे के रूप में प्रकट करता है। तो हम जो करने जा रहे हैं वह धर्म ग्रंथों में कुछ अंशों को देखना है, लेकिन ऐसा करने से पहले अगर मैंने आपको प्राचीन निकट पूर्व में चरवाहा शीर्षक की सर्वव्यापकता के बारे में नहीं बताया तो मैं गलती पर रहूंगा। राजाओं के लिए, चाहे वह सुमेरियन राजा हो, अक्कादियन राजा हो, बेबीलोन का राजा हो, मिस्र का राजा हो, प्राचीन निकट पूर्व के सभी राजा जिन्होंने हमारे लिए दस्तावेज छोड़े थे, उनमें स्वयं को चरवाहा कहा गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि थी क्योंकि इसे हमेशा एक बात कहने के लिए डिजाइन किया गया था। शीर्षक का विशिष्ट बिंदु हमेशा सौम्य और अनुकूल था क्योंकि यह प्राचीन निकट पूर्व में इस बात पर जोर देता था कि राजा चरवाहा था जो अपने लोगों को प्रदान करता था और उनकी रक्षा करता था। तो यह एक शक्तिशाली शीर्षक है जिसका उस पाठ के लिए व्यापक निहितार्थ है जिसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ मेरे कक्षा नोट्स में मैं हमें पुराने नियम में एक चरवाहे के रूप में भगवान के पास ले जाता हूँ। मैं आपको यहाँ तक कहना चाहूंगा कि उत्पत्ति एक और दो में एक अर्थ है जिसमें ईश्वर स्वयं को एक चरवाहे के रूप में चित्रित कर रहा है, क्योंकि उत्पत्ति एक और दो में वह आदम और हव्वा को प्रदान और संरक्षित कर रहा है। वह उन्हें भूमि प्रदान करता है जिस पर वे रह सकते हैं, और पानी जो स्थायी पानी है, और वह उनकी रक्षा करता है क्योंकि वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखता है। वह उन्हें बगीचे में रखता है। अब हम बगीचे के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उत्पत्ति एक और दो में इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर महान राजा है जो प्रदान करता है और सुरक्षा करता है। वास्तव में मुझे लगता है कि यह आतिथ्य सत्कार के रूप में भगवान की प्राचीन छवि की पृष्ठभूमि है, लेकिन यह एक और विषय क्षेत्र है जिसे मैं बचाऊंगा। पुराने नियम में पहला स्थान जहां हम आते हैं, जहां भगवान विशेष रूप से खुद को चरवाहा कहते हैं या चरवाहा के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह उत्पत्ति अध्याय 48 में है। और उत्पत्ति अध्याय 48 श्लोक 15 में हम इसे पढ़ते हैं। यह इसराइल के लिए आशीर्वाद है जब इसराइल यूसुफ के पुत्रों को देखता है। और इसलिए हम इसे पढ़ते हैं जैसे इसराइल ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और अध्याय 48 श्लोक 15 में कहा, वह परमेश्वर जिसके सामने मेरे पिता इब्राहिम और इसहाक चले, वह परमेश्वर जो आज तक जीवन भर मेरा चरवाहा रहा है, वह दूत जिसने मुझे छुड़ाया है सभी बुराइयों से, लड़कों को आशीर्वाद दो और मेरा नाम उनमें और मेरे पिता इब्राहिम और इसहाक के नाम पर बना रहे और वे प्रियवी के बीच में बहुत हो जाएं। यह निश्चित रूप से आकस्मिक नहीं है कि उत्पत्ति में पहली बार चरवाहा शीर्षक का उपयोग यूसुफ और उसके पुत्रों को याकूब के आशीर्वाद में किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि वह उस भगवान की प्राचीन शाही छवि को समझता था जिसकी वह पूजा करता था, क्योंकि यह भगवान एक प्रदाता और रक्षक था। वह याकूब के पूरे जीवन भर चरवाहा रहा है। मित्रों, चरवाहा शीर्षक के साथ हमारी एक समस्या यह है कि यह स्वतः ही हमारी सोच में एक देहाती चरवाहे का भाव जगा देता है। हमारे पास हमारे प्रभु यीशु की यह तस्वीर है जो गीतकार के शब्दों में एक सौम्य चरवाहा है। और हम में से किसने सुंदर सफेद भेड़, उसकी गोद में एक युवा भेड़ के साथ यीशु की तस्वीर नहीं देखी है? इसलिए हम इसके बारे में लगभग पूरी तरह से शाब्दिक चरवाहा और शाब्दिक भेड़ की कल्पना में सोचते हैं। इसलिए यदि मैं आपको पहले बताकर इसे और अधिक प्रभावी ढंग से शुरू कर सकूं, तो यह प्राचीन निकट पूर्व के लगभग सभी परिणामी राजाओं की उपाधि है। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि बाइबल इस शब्द का उपयोग किस प्रकार करती है, विशेष रूप से पुराने नियम में, तो हमें यह अपने दिमाग में रखना होगा कि शीर्षक के लिए मैट्रिक्स अब देहाती नहीं है। मुझे आशा है कि आप यह सुन रहे होंगे। शीर्षक का मैट्रिक्स अब देहाती नहीं बल्कि शाही है। प्राचीन काल में किसी समय देहाती छवि उन विचारों को प्रतिबिंबित करने का काम करती थी जिन्हें राजा बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन किसी समय, कौन जानता है, यह निश्चित रूप से एक क्षण नहीं था, यह मुख्य रूप से देहाती होना बंद हो गया और मुख्य रूप से शाही बन गया। आइए मैं समझाऊं कि हमने वही काम कैसे किया है। हमारी संस्कृति में हम में से कई लोग जो चर्च गए हैं, वे अपने मंत्रियों को अपना पादरी कहते हैं। पादरी चरवाहे के लिए लैटिन शब्द है। हम इसके बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे यह है एक शीर्षक। पादरी एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी अपने मैकेनिक के लिए उपयोग नहीं करेंगे। यह ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप अपने बीमा एजेंट के लिए कभी नहीं करेंगे। पादरी चर्च का आधिकारिक नेता होता है। इसने काफी हद तक अपनी मूल कल्पना खो दी है जो भेड़ और चरवाहों की थी, और अब यह एक शीर्षक बन गया है। तो यह प्राचीन काल में केवल इसलिए अधिक था क्योंकि उपाधि सीधे तौर पर राजसत्ता से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब जैकब कहता है, प्रभु जीवन भर मेरा चरवाहा रहा है, तो वह शायद लगभग निश्चित रूप से देहाती अर्थ में चरवाहे के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह इसके बारे में शाही अर्थ में बात कर रहा है, जहां भगवान उसका प्रदाता और उसका रक्षक था। उत्पत्ति में दूसरा अनुच्छेद जहां यह प्रकट होता है, वह उत्पत्ति 49 में है, अध्याय पूर्ण आशीर्वाद के लिए समर्पित है, और हम इसे जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं। श्लोक 24 में उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी भुजाएं याकूब के शक्तिशाली हाथों से फुर्तीली थीं। वहां से चरवाहा इसराइल का पत्थर या चट्टान है। अब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि उत्पत्ति 49 श्लोक 24 में उसने दो अलग अलग प्रतीत होने वाले शब्दों चरवाहा और चट्टान को एक साथ रखा है। यदि हम उन्हें शाब्दिक रूप से पढ़ते हैं तो वे केवल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यदि हम इन्हें शाही शब्दों के रूप में पढ़े तो ये एक साथ हैं। वह राजा है जो चरवाहा है, जो प्रदाता और रक्षक है। वह राजा है जो चट्टान है। उस विशेष मामले में वह इस अर्थ में प्रदाता और रक्षक है कि एक चट्टान ताकत और सुरक्षा प्रदान करती है। तो पुराने नियम के सिद्धांत की पहली पुस्तक में हम जो देखते हैं वह एक जागरूकता है कि ईश्वर चरवाहा है और चरवाहे की कल्पना अब पशु जगत की कल्पना नहीं है। यह वह कल्पना है जो प्रदाता और रक्षक के रूप में राजा की दोहरी गतिविधियों में सन्निहित हुई। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें चरवाहा के सबसे प्रसिद्ध मार्ग पर ले जा सकते हैं, निश्चित रूप से पुराने नियम में, शायद नए में। यह भजन 23 है। तो हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भजन 23 एक ऐसा अंश है जिसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। और मुझे आपको बताना होगा कि चूंकि मैं अभी आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसे मैं पढ़ने के लिए लाना चाहता था, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से कक्षा में नहीं हूँ, मैं एक वीडियो में हूँ कमरा, और इसलिए मैं यह दस्तावेज नहीं लाया। शायद जब व्याख्यानों का यह सेट पूरा हो जाएगा और मैं आज शाम घर जाऊंगा तो मुझे वह पुस्तक अपने साथ वापस लाने की याद आएगी। लेकिन मैंने यह सब जो कहा उसका कारण यह है कि भजन 23 पहली बार में शर्माते हुए भेड़ और चरवाहों के बारे में एक भजन जैसा दिखता है। भजन को लगभग हर कोई इसी तरह समझता है, लेकिन जब आप भजन के दूसरे भाग में पहुंचते हैं तो यह वास्तव में काम नहीं करता है। तो इसकी शुरुआत इस घोषणा से होती है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। अब जैसा कि आप मुझे अब आपसे बात करते हुए सुन रहे हैं, हम यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रशंसनीय है कि भजनहार जो कह रहा था वह यह है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, और उनकी भाषा में इसका अर्थ है प्रभु मेरा राजा है। मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा। वह मुझे हरी चराइयों में लिटाता है। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरा जीवन बहाल करता है। वह अपने नाम के कारण धर्म के मार्ग में मेरा मार्गदर्शन करता है। खैर, आपके लिए इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मेरे पास तुकुलटीनिनुरता प्रथम नामक असीरियन राजा का एक शाही शिलालेख है जो भजन 23 के समान आश्चर्यजनक रूप से समान है कि जब मेरे छात्र इसे सुनते हैं तो वे सचमुच चौंक जाते हैं। और यह बहुत स्पष्ट रूप से चित्रित करता है, और मैं निर्विवाद रूप से सोचता हूँ कि भजन 23 वास्तव में वर्णन नहीं कर रहा है। यह वास्तव में भेड़ और चरवाहों का वर्णन नहीं कर रहा है। यह भगवान को प्रदाता और रक्षक के रूप में वर्णित कर रहा है। तो भजन 23 वास्तव में क्या कह रहा है कि प्रभु मेरा राजा है, और भजन का पहला भाग हमें यह बताने में विभाजित है कि भगवान कैसे प्रदान करता है। वह हरी चरागाहें प्रदान करता है, वह शांत जल प्रदान करता है, इत्यादि इत्यादि। जिस किसी ने भी इसे पढ़ा है उसने सोचा है कि वह दूसरी छमाही में उस कल्पना से बिल्कुल भिन्न कल्पना में क्यों स्थानांतरित हो जाता है। यद्यपि मैं मृत्यु के साये की तराई में होकर चल रहा हूँ तो भी मुझे किसी विपत्ति का भय नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आपकी छड़ी और आपकी लाठी, ठीक है, आप वहां जाएं। राजा के रूप में भगवान के पास एक शाही छड़ी या छड़ी है, और वे मेरे साथ हैं। वे मुझे सांत्वना देते हैं। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सामने मेज तैयार करता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और अटल प्रेम जीवन भर मेरे साथ रहेंगे, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। खैर, एक मिनट, वह एक खूबसूरत देहाती दृश्य के बारे में बात कर रहा है। मुझे यकीन है कि आप इसे मेरे साथ देख सकते हैं। ईश्वर राजा है जो इन सभी सुंदर सफेद साफ भेड़ों से घिरा हुआ है। अगली कल्पना में वह ईश्वर द्वारा अपने शत्रुओं की उपस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बात कर रहा है। असल में मुझे यकीन नहीं है कि आपको कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। हम यह सब इस सप्ताह की व्याख्यान प्रस्तुति में पहली बार कर रहे हैं। लेकिन यहोशू की किताब में आपके पास एक उदाहरण है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज प्रदान करते हैं। आपको यहोशू के उस अंश में याद होगा कि अडोनाई बेजेक हार गया है। क्या यह यहोशू है या यह न्यायाधीश हैं? अभी मेरी याददाश्त मुझसे फिसल रही है, लेकिन किसी भी दर पर अडोनाई बेजेक हार गया है और एक पराजित राजा के रूप में वह यहोशू की मेज के नीचे बैठता है और वहां वह विजय यहोशू के प्रति समर्पण दिखाता है। खैर, यह सब हमें यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो वह स्पष्ट रूप से कुछ परिस्थितियों में पकड़े गए राजा को ले जाएगा और उसे राजा की अधीनता और विजय दोनों के संकेत के रूप में अपनी मेज के नीचे रख देगा। तो भजन 23 के दूसरे भाग में भगवान यह बताते हुए भजन को एकजुट कर रहे हैं कि कैसे भगवान राजा ने दुश्मनों को हरा दिया है और अपने दुश्मन को इसराइली राजा की मेज के नीचे रख दिया है। तो हमारे पास जो है वह भजन 23 को एकजुट करता है। भजन में सब कुछ चरवाहे की कल्पना से संबंधित नहीं है, भजन में सब कुछ शाही कल्पना से संबंधित है। स्तोत्र के पहले भाग में ईश्वर प्रदाता है, दूसरे भाग में भगवान रक्षक है। तो प्राचीन निकट पूर्व की रिलीज भाषा में राजा खुद को एक चरवाहे के रूप में संदर्भित करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि राजा प्रदान करता है और सुरक्षा करता है। भजन 23 में भगवान का चित्रण इसी प्रकार किया गया है। अब यह कोई बाइबल अध्ययन कक्षा नहीं है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा कि मैं एक चीज पर अधिक समय न खर्च करूं। लेकिन पामेला मिलने का एक अद्भुत लेख है जिसमें वह व्याख्यात्मक रूप से दिखाती है कि भजन 23 की भाषा निर्गमन भटकन से ली गई है। दूसरे शब्दों में शब्दावली भजन 23 की नकल करती है जो जंगल से गुजरने वाली इसराइल की भाषा है, और इसलिए यह जो कर रहा है वह बाद में कह रहा है। यह दिखा रहा है कि भगवान आज भी हमारे लिए ऐसा कर रहा है। जैसे निर्गमन में भगवान ने खुद को राजा दिखाया था, वैसे ही वह जंगल में नहीं भटक रहे हैं, वैसे ही अब वह राजशाही के दौर में खुद को राजा दिखा रहे हैं। इसलिए मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि चरवाहा शब्द एक शाही शब्द कैसे हैं और बाइबल के बाकी हिस्सों में इसके महान निहितार्थ हैं। तो मैं आपका ध्यान मीका के अध्याय 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मीका अध्याय 5 में हमारे पास बाइबल साहित्य में पहला स्थान है जहां मीका शब्द का प्रयोग एक मसीहाई मार्ग में किया गया है। इसलिए यदि आप मेरे साथ मीका अध्याय 5 में गए तो मीका ने यह लिखा है, सैनिकों की बेटियों अपने आप को सेना में इकट्ठा करो, उन्होंने छड़ी से हमें घेर लिया है, वे इसराइल के न्यायाधीश के गाल पर मारेंगे। निःसंदेह न्यायाधीश एक शाही शब्द होने के साथ साथ एक प्रशासनिक शब्द भी है। परंतु हे बेतलहम एप्राता, तुम यहूदा के कुलों में से थोड़े ही हो, तुम में से एक मेरे लिए इसराइल पर प्रधान होने को निकलेगा। उसकी गतिविधियां बहुत पहले से, अनंत काल से, प्राचीन काल से हैं। इस कारण वह उन्हें उस समय तक छोड़े रहेगा जब तक वह गर्भवती न हो जाए, तब उसके भाइयों में से बचे हुए लोग इसराइलियों के पास लौट आएंगे और वह उठकर अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि वह यहाँ जो कर रहा है वह आश्चर्यजनक है। वह हमें बता रहा है कि एक आने वाली आकृति है जो बेथलेहम से आएगी, और यह आने वाली आकृति क्या करेगी, वह अपने लोगों को बचाने के लिए एक महिला से पैदा होगी ताकि वह अपने झुंड की चरवाही कर सके। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, निस्संदेह एक महिला से, और वह जो करते हैं वह नए नियम में खुद को इसराइल के चरवाहे के रूप में पेश करता है। तो अगर हम खुद को याद दिला सकें कि चरवाहे का मतलब शासन करना, राजा के रूप में कार्य करना है, तो हमारे पास मीका 5 में आने वाले चरवाहे और राजा की भविष्यवाणी के बीच एक संबंध है, जिसे मैं चरवाहा शब्द का स्पष्ट रूप से मसीहाई उपयोग कहूंगा। संभवतः पुराने नियम में हमारे पास जो सबसे नाटकीय अंश है वह बाद की तारीख से आया है। यह ईजेकील है और ईजेकील में उसने अपनी पुस्तक का लगभग पूरा अध्याय पुराने नियम के एकमात्र मामले को समर्पित किया है जहां हमारे पास चरवाहा रूपक रूप से विकसित हुआ है। दूसरे शब्दों में पूरा अध्याय किसी अनोखी चीज को सौंप दिया गया है। यह चरवाहा रूपक है जो हमेशा राजत्व के बारे में होता है, लेकिन वह इसे आने वाली आकृति की गतिविधि का वर्णन करने के लिए रूपक रूप में प्रस्तुत करता है, और फिर वह जो करता है वह यह है कि वह अपने लंबे रूपक में श्लोक 22 में कहकर अंत में इसका चरमोत्कर्ष करता है। श्लोक 22 में रूपक अध्याय, इसलिए मैं अपने झुंड को छुड़ाऊंगा और वे फिर से शिकार नहीं होंगे, और मैं एक भेड़ और दूसरे के बीच न्याय करूंगा, और फिर बहुत नाटकीय और महत्वपूर्ण कविता पर ध्यान दूंगा, फिर मैं उन पर एक चरवाहे को नियुक्त करूंगा, मेरा दास दाऊद, और वह उनको चराएगा, वह आप ही उनको चराएगा, और उनका चरवाहा ठहरेगा, और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान ठहरेगा। मुझे लगता है कि यह एक और अंश है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि यह आश्चर्यजनक रूप से मसीहा जैसा है। डेविड ने ईश्वर के बारे में इसराइल के चरवाहे के रूप में लिखा था, और अब यहेजकेल के समय तक डेविड को 5 शताब्दियां हो गई थीं, और इसलिए यहेजकेल कहता है, मैं उन पर एक चरवाहा, मेरा नौकर डेविड, और निश्चित रूप से स्थापित करने जा रहा हूं। नए नियम में यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है, और इसलिए हमारे पास जो कुछ है वह मुझे लगता है कि यहाँ बहुत नाटकीय है, या वास्तव में कई चीजें जो इतनी नाटकीय हैं। वह स्वयं भगवान के साथ नए चरवाहे का एकीकरण है। मैं आपको एक बार फिर से उस अंश की ओर इंगित करना चाहता हूँ। मैं उन पर एक चरवाहा अपने दास दाऊद को नियुक्त करूंगा, और पद 24 में मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मेरा सेवक दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। उसने यहाँ जो किया है वह आने वाले चरवाहे और राजा को स्वयं ईश्वर की उपस्थिति के साथ एकजुट करना है, और यह निश्चित रूप से यीशु के आत्म प्रतिनिधित्व पर पूरी तरह से फिट बैठता है, जिसके बारे में हम जॉन अध्याय 10 में सबसे नाटकीय रूप से पढ़ते हैं। ईजेकील 34 को दिखाया गया है, व्याख्यात्मक रूप से यह नए नियम के महानतम चरवाहा परिच्छेद की पृष्ठभूमि है जो जॉन 10 है। जॉन 10 में यीशु जिस चरवाहे के बारे में बात करते हैं वह भाषा है। जॉन 10 में कई अन्य चीजों के अलावा जो ईजेकील 34 से ली गई हैं। अब इससे पहले कि हम जॉन 10 तक पहुंचें, जो कि पुराने नियम की पृष्ठभूमि के मापदंडों से काफी परे हैं, शायद मैं इससे दूर हो सकता हूं क्योंकि अभी मुझे रोकने के लिए यहां कोई नहीं है। इससे पहले कि हम उस तक पहुंचें, मैं आपको परिणाम के अंतिम चरवाहा मार्ग पर ले चलता हूं। यह जकर्याह अध्याय 10, 11 और 13 से हमारे पास आता है, और ये अंश वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि जकर्याह के दूसरे भाग में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जकर्याह व्याख्या करने के लिए पुराने नियम की सबसे कठिन पुस्तकों में से एक है। जकर्याह के दूसरे भाग में वह इस आने वाले चरवाहे की आकृति के बारे में बात करता है, और वह उसे जकर्याह में मारे गए चरवाहे के रूप में संदर्भित करता है। यह वास्तव में पहला स्थान है जहां वह खुले तौर पर इस आने वाले चरवाहे के बारे में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करता है जो कि प्रभावित है, और इसलिए यह तथाकथित पीड़ित चरवाहा जो जकर्याह में कई अध्यायों का बड़ा हिस्सा लेता है वह पहला स्थान है जहां उसे मारा हुआ या उस पंक्ति के समान कुछ के रूप में चित्रित किया गया है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वह एक शाही राजा के रूप में आने वाले चित्र को भी चित्रित करता है। और इसलिए यदि मैं आपको अध्याय 9 में वर्णन कर सकूं एक अंश जो विशेष रूप से ईसा मसीह की महत्वपूर्ण आत्म प्रस्तुतियों में से एक में उपयोग किया गया था, तो पाठ हमें जकरयाह के अध्याय 9 में बताता है, हे सियोन की बेटी बहुत आनंदित हो, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार करो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह धर्मी है और उद्धार से संपन्न है, विनम्र है और गधे पर, यहाँ तक कि गधे के बच्चे पर भी सवार है, और फिर वह इसराइल की ओर से शांति लाएगा। खैर, इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा है मानो जकरयाह के पूरे दूसरे भाग में आने वाले चरवाहे के बारे में बात करना मुख्य जोर या लक्ष्य है, जो यरूशलेम आएगा और गधे पर सवार होकर शहर में खुद को इसराइल के राजा के रूप में घोषित करेगा। सभी चार गॉस्पेल इस घटना को ईसा मसीह के रूप में दर्ज करते हैं। जैसे ही वह अपने जीवन के अंत के करीब आता है, अपने लोगों के लिए उसका अंतिम महान रहस्योद्घाटन कार्य गधे पर सवार होकर शहर में प्रवेश करना है और खुद को इज़राइल का चरवाहा व्यक्ति घोषित करना है। अब उस चरवाहे की छवि का मतलब राजा है और वह खुद को राजा के रूप में पेश करने के लिए आता है। मैं आपको समझाता हूँ, हम इस टेप पर ज्यादा समय तक नहीं जाएंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इसे आप तक पहुँचा दूँ सुसंगत रूप से, जैसा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि यह एक व्याख्यान है और मैं आपके प्रश्न नहीं सुन सकता, लेकिन सभी चार सुसमाचारों में उनके श्रोताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, उनका राजा के रूप में स्वागत किया जाता है। जब वह शहर में आता है तो वे पहचान जाते हैं, वे पहचानते हैं कि वह इसराइल का चरवाहा बनने के लिए आ रहा है, और वे उसका स्वागत करते हैं, वे उसे चिल्लाते हैं, होसन्ना, वे उसके रास्ते में खजूर के पेड़, खजूर के पेड़, खजूर की शाखाएं बिछाते हैं। मैं अब भूल गया हूं कि मैकाबीन राजाओं में से कौन सा, बाद के राजाओं में से एक, जब वह यरूशलेम आता है तो वह इस तरह आता है, और दर्शकों ने पहचान लिया कि वह खुद को इसराइल के राजा के रूप में पेश कर रहा था, और मैकाबीस की किताब में से एक, तीन पुस्तकें, यह विशेष रूप से बताती हैं कि उन्होंने होसन्ना कहकर उसका स्वागत किया, और उन्होंने ताड़ के पेड़, ताड़ की शाखाएं बिछा दी, क्षमा करें, और इसराइल के राजा के रूप में उसका स्वागत किया। जब यीशु गधे पर आए, तो मेरे लिए यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कोई शाही विरोधी बयान नहीं था। वह इस प्रकार विनम्रतापूर्वक नहीं आ रहा था जैसे कि वह कोई राजा न हो, वह इसराइल के राजा के रूप में आ रहा था, और दर्शकों ने इसे पहचान लिया, और उन्होंने इसराइल के राजा के रूप में उसका सहर्ष स्वागत किया। जाहिर तौर पर जब वह इसराइल का राजा बनने में अपने मूल्यों के अनुसार असफल हो गया, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। पिलातुस ने खुद को राजा के रूप में घोषित करने की शाही घोषणा से सीधा संबंध बनाया। पिलातुस ने इसे पहचाना और उसके राजा होने के दावे का मजाक उड़ाते हुए क्रूस के शीर्ष पर यह लिखवाया, यहूदियों का राजा। अब हम ईसाई दृष्टिकोण से जानते हैं कि यीशु इसराइल के राजा बने, लेकिन एक अलग तरह के राजा। लेकिन मैं हमें जो सुझाव दूंगा वह यह है कि गधे पर आकर वह राजाओं की दो प्राचीन प्रथाओं की अपील कर रहे थे, उनके प्रदाता और उनके रक्षक बने। वह उनके लिए न केवल हरी चरागाहें और शांत जल उपलब्ध कराएगा, वह उन्हें जीवन की रोटी उपलब्ध कराएगा। वह केवल उन्हें शत्रुओं से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्रदान करके स्थायी रूप से उनकी रक्षा करने के लिए आया था। इसराइल के चरवाहे के रूप में यीशु उन क्लासिक तरीकों से प्रदान करने और सुरक्षा करने के लिए आए जो पुराने नियम में राजा करते थे। हालांकि यीशु केवल एक राजा के रूप में नहीं थे जो 40 वर्षों तक जीवित रहेगा और फिर मर जाएगा, वह अनंत तरीकों से उन्हें प्रदान करने और उनकी रक्षा करने के लिए आया था। इसलिए उन्होंने अपने राजत्व की प्रकृति का वर्णन करने के लिए राजत्व की प्राचीन संरचनाओं का उपयोग किया, जो कि राजत्व था, लेकिन ऐसा राजत्व जो अपनी प्रजा को अनंत काल तक प्रदान करता था। तो उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हम अपना ध्यान नए नियम में जॉन अध्याय 10 पर अपेक्षाकृत त्वरित नजर डाल सकते हैं। इससे पहले कि हम जॉन तक पहुंचें, मैं आपको याद दिला दूं कि मैथ्यू में यीशु को इज़राइल का चरवाहा भी कहा गया है। बाइबल के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं 50 वर्षों से इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूं और ईमानदारी से कहूं तो मैंने अभी इसकी सतह को ही खंगाला है। यह बेहद दिलचस्प है क्योंकि यह न केवल हमें बताता है कि भगवान कौन है बल्कि यह भी बताता है कि भगवान क्या करता है। इसलिए जॉन अध्याय 10 में जॉन ने नाटकीय ढंग से यीशु का परिचय दिया क्योंकि यीशु नया मूसा और नया मूसा दोनों हैं, लेकिन नया मूसा अब भगवान है। इसलिए यदि मैं आपका ध्यान तुरंत जॉन अध्याय 1 की ओर आकर्षित कर सकूं, जैसे जॉन हमारे सामने इज़राइल के मसीहा की पहचान प्रस्तुत करता है, वह उसे उन तरीकों से प्रस्तुत करता है जो प्रतीत होता है कि मौलिक रूप से भिन्न हैं। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान था और शब्द भगवान के साथ था और वह हमें एक स्तुतिगान देने के लिए आगे बढ़ता है जो हमें सृजन में वापस ले जाता है। इसलिए जब वह यीशु के शब्द होने के बारे में बात करता है तो जॉन यह स्पष्ट कर देता है कि यह यीशु है। वर्तमान यीशु वह शब्द है जो उत्पत्ति 1 और 2 में बनाया गया था। उस बिंदु को बनाने के बाद वह फिर कहना शुरू करता है, लेकिन जितनों ने उसे प्राप्त किया उसने पद 12 में उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। यह एक शब्दावली है जो केवल जॉन में ही प्रकट होती है उन लोगों के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। निस्संदेह यीशु नाम का अर्थ है वह बचाएगा। जो न खून से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। और फिर जॉन चाहता है कि आप समझें कि इज़राइल का मसीहा कौन है। पद 14 में वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। जॉन यहां एक शब्द बनाता है, यह संज्ञा रूप टेबरनेकल है और वह इसे क्रिया में बदल देता है। पिता के एकलौते की महिमा हो, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। खैर, जॉन यहां क्या कर रहा है यह दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने इस पर बहुत काम किया है। वह जो कर रहा है वह मूसा के बारे में बात कर रहा है। और अंग्रेजी बाइबल के पाठकों को माफ किया जा सकता है यदि वे संबंध नहीं देखते हैं, परंतु वास्तव में वह हमारे बीच में निवास करता था। और यूहन्ना कहता है, हमने उसकी महिमा देखी जैसे एकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। ठीक है, आपको मूसा की कहानी याद होगी जब मूसा का ईश्वर के साथ सबसे अंतरंग क्षण था। मूसा ने उस क्षण का चरमोत्कर्ष यह कहकर किया था कि मुझे अपनी महिमा दिखाओ। और परमेश्वर मूसा से कहते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी महिमा नहीं देख सकते। तो इसके बजाय भगवान उसे क्या प्रकट करते हैं यदि मार्ग निर्गमन 33 और 34 में वापस आता है, विशेष रूप से निर्गमन के अध्याय 34 में। वहां भगवान कहते हैं कि वह उसे चट्टान के एक दरार में रखता है और फिर वह उसके गुणों के सामने परेड करता है और फिर उसे निर्गमन 34:6 और 7 में दिव्य नाम का अर्थ समझाता है। इसलिए वह उसे ईश्वर के बारे में पुराने नियम का प्रसिद्ध पंथ देता है और बताता है कि उसकी महिमा उसके नाम से प्रकट होती है। और अब जॉन यीशु मसीह के व्यक्तित्व में इसका खुलासा कर रहा है। तो जॉन अध्याय 1 में क्या कर रहा है? एक लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो वह जो कर रहा है वह यह है कि उसने हमें यह बताकर कि यीशु नया मूसा है पूरे सुसमाचार के लिए मंच तैयार किया है। वह नया राजा है, वह नया मूसा है जो देहधारी परमेश्वर भी है। यह यही एक लुभावनी रहस्योद्घाटन है और यह इस बात के लिए मंच तैयार करता है कि जॉन हमें इज़राइल के मसीहा की पहचान के बारे में क्या समझाना चाहता है। और उसकी पहचान यह है कि वह मूसा और दाऊद है, परंतु वह परमेश्वर का अवतार भी है। और यह सटीक संदेश है जिसे यीशु उपयोग करेंगे, जिसे जॉन पूरे सुसमाचार में उपयोग करेगा, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित है कि वह स्वयं को महान मैं हूं के रूप में संदर्भित करता हूं। यह रहस्योद्घाटन है। इसलिए जॉन के सुसमाचार में मुझे लगता है जॉन का प्राथमिक लक्ष्य न केवल यह प्रकट करना है कि यीशु कौन है, वह नया मूसा और देह में ईश्वर है, बल्कि यह नया मूसा हमारे लिए क्या कर सकता है जो पुराने मूसा ने किया था, लेकिन नए मूसा जो कर सकते थे उससे कम तरीकों से किया। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम जॉन अध्याय 10 के लिए मंच तैयार कर सकते हैं, और हम संभवतः अगले कक्षा समय में जॉन 10 व्याख्यान लेंगे और तैयारी करेंगे। लेकिन जॉन अध्याय 10 में यीशु जो कर रहा है वह खुद को नए युग के ईश्वर राजा के रूप में प्रकट करने के लिए चरवाहे रूपक का उपयोग कर रहा है। तो इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं आपको बता दूं और फिर शायद हम अपना ब्रेक यहीं समाप्त कर देंगे। जॉन 10 के सामने पूरे नए नियम में वास्तव में संपूर्ण बाइबल में सबसे लंबा उपचार अध्याय है। सभी अध्यायों में अंधे व्यक्ति के उपचार का वर्णन दिया गया है। फिर अध्याय 10 में यीशु स्वयं को इसराइल के परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। आपको शायद यशाया 61 में याद होगा कि आने वाला आंकड़ा अंधे को ठीक कर देगा। वापस जाए और यशाया 42 पढ़े और आप कहेंगे कि वहां मसीहा अंधों को चंगा करने वाला है। और मैथ्यू में यीशु ने वही काम किया जब जॉन बैप्टिस्ट जेल में था और वह मरने वाला था, इसलिए उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास जाकर उससे पूछा, क्या आप वास्तव में मसीहा हैं या हमें किसी और की उम्मीद करनी चाहिए। यीशु कहते हैं, जाकर यूहन्ना से कहो कि तुम क्या देखते हो। मुर्दे जिलाए जाते हैं और अंधे चंगे किए जाते हैं। खैर, इसराइल के राजा मसीहा की गतिविधि में वह व्यक्ति है जो अंधों को ठीक करेगा। पूरे 9वें अध्याय को अंधों के उपचार के लिए समर्पित करना अध्याय 10 की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, जिसमें यीशु को अच्छे चरवाहे के रूप में चित्रित किया गया है। उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शायद मैंने अपने अगले व्याख्यान के लिए मंच तैयार कर लिया है, जो विशेष रूप से जॉन 10 के गुड शेफर्ड मार्ग पर केंद्रित हो सकता है। फिर हम रिलीज की भाषा को समाप्त कर सकते हैं जिसे हमने पिछले व्याख्यान में शुरू किया था। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 8 है, शेफर्ड किंग।